मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है और मैं BA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। और आज मैं आपके लिए राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में जानने के लिए हमें उसके स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। आइए हम जानते हैं उसके स्रोत। राष्ट्रकूट राजवंश का इतिहास हम मुख्य रूप से उसके शासकों द्वारा खुदवाए गए बहुसंख्यक अभिलेखों द्वारा दान पत्रों से ज्ञात करते हैं, जो उनके साम्राज्य के विभिन्न भागों से प्राप्त किए गए हैं। प्रमुख राष्ट्रकूट लेखों का विवरण इस प्रकार है। पहला, दंत दुर्ग के एलोरा का सामंतगढ़ के ताम्रपत्र अभिलेख। द्वितीय, दूसरा, गोविंद तृतीय के राघनपुर बनी दिंदोरी तथा बड़ौदा के लेख। तीसरा, अमोघ वर्ष प्रथम का संजन अभिलेख। चौथा, इंद्र तृतीय का कमलपुर अभिलेख। गोविंद चतुर्थ के कांबे तथा सांगली लेख। कृष्ण तृतीय के कोल्हापुर देवली तथा कर्नाट लेख। उपयुक्त लेखों के में से अधिकांश तिथि युक्त हैं। इनमें राष्ट्रकूट राजाओं की वंशावली, उसके सैनिकों, अभियानों, धार्मिक अभिरुचि, शासन व्यवस्था आदि सभी बातों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेख राष्ट्रकूट इतिहास के प्रामाणिक साधन है। राष्ट्रकूट काल में कन्नड़ तथा संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। इनमें जिन सेन का आदि पुराण, महावीराचार्य का गणित सार संग्रह, अमोघ वर्ष का कवि राजमार्ग का उल्लेखनीय है। इनमें अमोघ वर्ष के धार्मिक जीवन के विषय में सूचनाएं मिलती हैं। साथ ही इनके अध्ययन से तत्कालीन समाज और संस्कृति की दशा का भी बोध होता है। उत्पत्ति तथा मूल स्थान के बारे में अब हम जानेंगे। दक्षिणापथ में बादामी के चालुक्य वंश का विनाश राष्ट्रकूटों द्वारा हुआ। राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत दिए जाते हैं, जैसे कि इस वंश के कुछ लेखों में इन्हें रट्ट कुल का बताया गया है। इंद्र तृतीय के नवसारी लेख में कहा गया है कि अमोघ वर्ष ने रट्ट कुल लक्ष्मी का उद्धार किया था। कृष्ण तृतीय के देवली और करहड़ लेखों से पता चलता है कि राष्ट्रकूट तुंग के वंशज थे तथा उनका आदि पुरुष रट्ट था। वर्धा ताम्रपत्र राष्ट्रकूटों के को रट्टा नामक राजकुमारी से संबंधित करते हैं। इस आधार पर R.G. भंडारकर का निष्कर्ष है कि राष्ट्रकूट तुंग कुल के थे। तुंग का पुत्र रट था, इसी वंश का राष्ट्रकूट कहा गया। किंतु यह निष्कर्ष असंगत लगता है, क्योंकि हमें किसी भी तुंग या रट नाम के शासक की जानकारी नहीं है। फ्लिट ने राजकूटों का संबंध राजपुताना के राठौरों से संबंधित किया है। V.N. रेव के अनुसार ये गढ़वालों से संबंधित थे, किंतु ये मत मान्य नहीं है, क्योंकि हम इन दोनों के ही वंशों का उदय राष्ट्रकूटों से बहुत बाद में हुआ। इसी प्रकार बर्नेल नामक विद्वान ने राष्ट्रकूटों को आंध्र की रेडियो से संबंधित बताया है, किंतु यह मत भी उचित नहीं लगता, क्योंकि राष्ट्रकूटों का मूल स्थान आंध्र नहीं था। C.V. वैद्य के अनुसार अनुमान है कि राष्ट्रकूट मराठों के पूर्वज थे, जिनकी मातृभाषा मराठी थी, किंतु अल्टेकर इनकी भाषा मराठी न मानकर कन्नड़ मानते हैं। अल्टेकर, नीलकंठ शास्त्री, H.B. राय, H.K. मजुमदार आदि विद्वान का विचार है कि राष्ट्रकूट शब्द किसी जाति का सूचक न होकर पद का सूचक है। वस्तुतः राष्ट्रकूट पहले प्रशासनिक अधिकारी थे। इस शब्द का अर्थ है राष्ट्र प्रांत का कूट अर्थान प्रधान। प्राचीन भारत में साम्राज्य का विभाजन कई राष्ट्रों में किया जाता है। जिस प्रकार ग्राम या अधिकारी ग्रामकूट होता था, उसी प्रकार राष्ट्र का अधिकारी राष्ट्रकूट था। इन अधिकारियों की कालांतर में एक विशिष्ट जाति बन गई। इस प्रकार की कुछ अन्य जातियां प्रतिहार, पेशवा आदि हैं। प्राचीन काल में अभिलेखों में राष्ट्रकूट नामक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अशोक के लेखों में रठिक नाम के पदाधिकारियों का उल्लेख है। सातवाहन युगीन नानाघाट के लेख को महारठी त्रण का कईयों का उल्लेख मिलता है। हाथी गुफा लेख में पता चलता है कि खारवेल ने रठिकों को पराजित किया था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रकूट एक प्रशासनिक पद था, किसी जाति या कबीले का बोधक नहीं। बाद में राष्ट्रकूट अभिलेखों में उन्हें यदुवंश से संबंधित किया गया है। एक लेख में दंती दुर्ग को यदुवंश की साहित्यिक शाखा से उत्पन्न बताया गया है। कुछ लेख में इन्हें चंद्रवंशी क्षत्रिय बताते हैं। राघुनपुर के लेख में इस वंश ने गोविंद तृतीय की तुलना यदुवंशी कृष्ण से की गई है। इस प्रकार राष्ट्रकूटों को क्षत्रिय मानना ही अधिक समीचीन लगता है। बादामी के चालुक्यों का पदस्थ करने वाले राष्ट्रकूट मूलतः लट्टूर महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के वर्तमान लट्टूर के निवासी थे। लेखों में उन्हें लट्टूर पूर्वाधीश्वर कहा गया है। इस स्थान पहले कर्नाटक में था। इस कुल के लोग चालुक्यों के राज्य के जिलाधिकारी राष्ट्रकूट थे। उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। इस वंश के कुछ पूर्वज बरार में जाकर बस गए और 640 ईस्वी में उन्होंने सामंत पद प्राप्त किया। अब हम राष्ट्रकूटों की विभिन्न शाखाओं के बारे में जानेंगे। राष्ट्रकूट लेखों में हमें कई इनकी कई शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो छठी शताब्दी में दक्षिणापथ के विभिन्न भागों में सामंत रूप में निवास करती थी। उदिंडवाटिका लेख सातवीं शताब्दी में जो है उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रकूट सामंत का उल्लेख जो मानपुर का शासक था उसके तीन पूर्वजों मनांग देवराज तथा भविष्य के नाम भी दिए गए हैं। ये महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश और के बेतुल मालवा क्षेत्र में शासन करते थे। राष्ट्रकूटों की दूसरी शाखा अचलपुर में निवास करती थी। इस शाखा के चार शासकों के नाम मिलते हैं, दुर्गा राज, गोविंद राज, स्वामिक राज तथा नन्नराज। इनमें नन्नराज सबसे शक्तिशाली था। यह कुल सबसे बादामी के चालुक्यों के अधीन था, किंतु बाद में यह स्वतंत्र हो गया। इसी वंश की एक शाखा दक्षिणापथ में सातवीं शताब्दी के मध्य विद्यमान थी, जिसका पहला शासक दंती वर्मा था। वह भी बादामी के चालुक्यों का सामंत था। 760 ईस्वी में चालुक्य वंश कीर्ति वर्मा द्वितीय को पराजित कर उसने कर्नाटक पर अधिकार कर लिया तथा मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाई। राष्ट्रकूटों की इसी शाखा ने इतिहास में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त किया। राष्ट्रकूटों की एक अन्य शाखा लाट प्रदेश जो दक्षिणी गुजरात में निवास करते थे, इस एक लेख के अनुसार चार राजाओं के नाम दिए गए हैं, कर्कराज प्रथम, ध्रुव गोविंद तथा कर्कराज द्वितीय। इनमें अंतिम कुछ शक्तिशाली था, किंतु इन राजाओं की उपलब्धियों के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। मान्यखेट का राष्ट्रकूट राजवंश जो सबसे शक्तिशाली राजवंश था, उसके बारे में अब हम जानेंगे। उसका प्रारंभिक इतिहास। मान्यखेट के राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक दंती वर्मा लगभग 650 से 665-70 ईस्वी तक शासन किया। इसकी उपलब्धियां अज्ञात हैं। उसके बाद इंद्रपृच्छ कराज 670 से 690 ईस्वी तथा गोविंद राज 690 से 700 ईस्वी राजा बने। इन कार्यों के विषय में भी कोई जानकारी नहीं है। गोविंद राज के बाद उसका पुत्र कर्क राज शासक बना। कर्क राज को तीन पुत्रों के नाम मिलते हैं, इंद्र, कृष्ण तथा नन्न। इनमें कृष्ण कुछ शक्तिशाली था, वही अपने पिता के बाद राजा बना। वह चालुक्य नरेश विजयादित्य का सामंत था। इसी रूप में उसने मध्य भारत में मराठी भाषा भाषी भागों की विजय की थी। संजन तामपत्रों से पता चलता है कि इंद्र ने चालुक्य राजा खेटक गुजरात स्थित कैरा में पराजित किया तथा उसकी कन्या भगनावा के साथ राक्षस विवाह कर लिया। इंद्र प्रारंभिक राष्ट्रकूट शासकों में सबसे योग्य प्रतिभाशाली शासक था। उसने संवत 715 ईस्वी से लेकर 735 ईस्वी तक राज्य किया। राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना के बारे में अब हम जानने जा रहे हैं। राष्ट्रकूट वंश का वास्तविक संस्थापक दंती दुर्ग माना जाता है। राष्ट्रकूट वंश की स्वतंत्रता तथा जन्मदाता प्रथम शासक दंती दुर्ग था। वह इंद्र की नागा नामक चालुक्य राजकन्या से उत्पन्न पुत्र था। उसकी उपलब्धियों के विषय में हम उसके समय के दो लेखों दशावतार 742 ईस्वी तथा समनगढ़ का लेख 753 ईस्वी से जानकारी प्राप्त करते हैं। बाद के कुछ अन्य लेख भी उसकी उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। दंत दुर्ग ने बादामी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय को सामंत के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। इसी रूप में उसने कुछ विजय कर अपनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा को बढ़ावा दिया। अल्टेगर का विचार है कि दंत दुर्ग ने अपने स्वामी की आज्ञा से गुजरात के चालुक्य के राजा जनाश्रय पुलकेशिन की ओर अरबों से युद्ध किया तथा उन्हें पराजित किया था। उसकी इस सफलता से प्रसन्न होकर विक्रमादित्य ने उसे पृथ्वी बल्लभ तथा खडवालोक की उपाधियों के सम्मानित किया। इसके बाद उसने युवराज कीर्ति वर्मा द्वितीय के साथ कांची के पल्लवों के विरुद्ध अभियान में भाग लिया तथा उसको पराजित करके महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वापसी में उसने कुरनूल में श्रीशैल के शासक को भी जीता। इन युद्धों में प्राप्त सफलताओं से उसकी महत्वाकांक्षा स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ गई होगी। अतः 744 ईस्वी में कांची की विजय से वापस लौटने के पश्चात दंत दुर्ग ने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से अपना अभियान प्रारंभ कर दिया। सौभाग्य से चालुक्य वंश में विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई तथा उसका उत्तराधिकारी कीर्ति वर्मा द्वितीय उतना योग्य तथा अनुभवी नहीं था। इस परिस्थिति में दंत दुर्ग का कार्य सरल हो गया। उसने अपना विजय अभियान पूर्व तथा पश्चिम दिशा से प्रारंभ किया ताकि चालुक्य सम्राट का कम से कम प्रतिरोध सहना पड़े। सर्वप्रथम नंदीपुरी से गुर्जरों तथा नवसारी के चालुक्यों को पराजित कर उसने उनको राज्यों का अधिकार कर लिया। तत्पश्चात उसने मालवा के प्रतिहार राज्य पर आक्रमण किया। उज्जैन के ऊपर उसका अधिकार हो गया। यहाँ उसने हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ किया जिसमें उसने प्रतिहार राजा को द्वारपाल बनाया। यह आक्रमण एक थावा मात्र था। दंत दुर्ग ने प्रतिहार राज्य पर अपना अधिकार नहीं किया तथा उसे अपने प्रभाव में लाकर संतुष्ट हो गया। इस अभियान के बाद उसने कोसल तथा कलिंग के राजाओं को पराजित किया। इस प्रकार उसने अपना राज्य या प्रभाव मध्य एवं दक्षिणी गुजरात तथा संपूर्ण मध्य प्रदेश में विस्तृत किया। दंत दुर्ग का बढ़ता हुआ प्रभाव कीर्ति वर्मा के लिए खुली चुनौती था जिसकी वह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकता था। अतः दोनों के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया। कीर्ति वर्मा ने नवसारी के सामंत को पुनः उसके पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। दंत दुर्ग की ओर से इसका विरोध किए जाने पर दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें दंत दुर्ग ने कीर्ति वर्मा को पराजित किया। समनगढ़ लेख के अनुसार उसने बिना शस्त्र उठाए ही अपनी भूमृगा मात्र की कीर्ति वर्मा की कर्नाट सेना को पराजित कर दिया। अल्टेकर के अनुसार यह युद्ध महाराष्ट्र में कहीं लड़ा गया था। इस विजय के फलस्वरूप दंत दुर्ग महाराष्ट्र का स्वामी बन गया तथा उसने महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक की जैसी उपाधियां धारण की। किंतु कीर्ति वर्मा की इस पराजय से चालुक्यों के कर्नाटक राज्य में कोई कमी नहीं आई। कीर्ति वर्मा 757 ईस्वी तक संपूर्ण कर्नाटक का शासक बना रहा। 754 ईस्वी में सतारा में उसने एक ग्राम दान किया तथा 757 ईस्वी में उसने अपनी सेना के साथ वह भीमा नदी के तट पर स्कंधावर में पड़ा हुआ था। इस प्रकार दंत दुर्ग सामंतों की शक्ति को विनष्ट नहीं कर पाया। 756 ईस्वी के लगभग उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार दंत दुर्ग एक महान विजेता तथा कूटनीतिज्ञ शासक था। वह राजकूट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। दंत दुर्ग ब्राह्मण धर्मावलंबी था। उसने शास्त्रों में आदेशानुसार शासन किया तथा कई गांव दान में दिए थे। उज्जैनी में उसने बड़ी मात्रा में स्वर्ण तथा रत्नों का दान दिया था। अब हम कृष्ण प्रथम के बारे में जानेंगे। दंत दुर्ग ने 756 ईस्वी के लगभग तक शासन किया। वह निसंतान मरा। अतः उसके बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक बना। कृष्ण प्रथम भी दंत दुर्ग के समान साम्राज्यवादी शासक था। राज्यारोहण के पश्चात सभी दिशाओं में उसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। उसके राजा बनते ही लाट प्रदेश के शासक कर्कदिति और उसका भतीजा ने विद्रोह कर अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया। कृष्ण ने वहां आक्रमण कर उन्हें पराजित किया तथा लाट प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत बना ली। बेगरमा तथा सूरत के दान पत्रों से पता चलता है कि राहब नामक किसी शासक को पराजित कर उसकी पाली ध्वज पताका को छीन लिया गया तथा राजधिराज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की। दुर्भाग्यवश इस शासक के समीकरण के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी पता नहीं चलता। अब हम बादामी के चालुक्यों को विषय में जानेंगे जिसको कृष्ण प्रथम ने पराजित किया था और उसका संपूर्ण विनाश कर दिया था। अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत कर लेने के पश्चात कृष्ण ने बादामी के चालुक्यों की ओर ध्यान दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि दंति दुर्ग ने चालुक्य नरेश को परास्त, कीर्ति वर्मा ने कर्नाटक में शरण ली तथा वहां से सेना तैयार कर उसने पुनः कृष्ण प्रथम के समय में अपना राज्य वापस लेने का प्रयास किया। कृष्ण प्रथम ने 760 ईस्वी से लगभग उसकी शक्ति का पूरी तरह से विनाश कर दिया। विनिदी तथा राधनपुर अभिलेखों में वर्णन मिलता है कि कृष्ण ने चालुक्य सेना के समुद्र को विमथित कर उसकी राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया था। परवर्ती चालुक्य लेखों से भी इस बात का समर्थन हो जाता है जिसके विवरण के अनुसार चालुक्यों की ख्याति तथा कीर्ति वर्मा के साथ ही समाप्त हो गया। कृष्ण प्रथम के साथ युद्ध में कीर्ति वर्मा तथा उसके सभी पुत्र मार डाले गए। समस्त कर्नाटक के ऊपर राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया। इसकी पुष्टि परवर्ती चालुक्य लेखों के कथन से भी हो जाती है। चालुक्यों की कीर्ति वर्मा के साथ ही समाप्त हो गई। इसके बाद दक्षिणी कोंकण में जीत कर महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में उसने अपनी स्थिति मजबूत कर तथा वहां सणफुल्ल नामक व्यक्ति को अपना सामंत बनाया जो शिलाहार वंश का संस्थापक था। अब हम गंग वंश के विरुद्ध उसके अभियान के बारे में जानेंगे। चालुक्य राज पर अधिकार करने के पश्चात कृष्ण ने मैसूर के गंगों पर आक्रमण कर उसको अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार गंग वंश का शासक श्री पुरुष था। उसने राष्ट्रकूटों का डटकर मुकाबला किया। उसके छोटे पुत्र सियगल ने कृष्ण के विरुद्ध प्रारंभ में कुछ सफलता प्राप्त की, लेकिन अंततः कृष्ण विजयी रहा। उसने गंगों की राजधानी मान्यपुर के ऊपर अधिकार कर लिया। गंग नरेश श्री पुरुष को एक छोटे भाग पर सामंत रूप में शासन करने की अनुमति प्रदान कर 769 ईस्वी में कृष्ण को अपनी राजधानी वापस लौट आया। वहां आकर उसने कृष्ण के सामंत के रूप में शासन करना स्वीकार किया। अब बेंगी के चालुक्य राज्यों पर अधिकार के बारे में जानेंगे। कृष्ण ने अपने बड़े पुत्र गोविंद को युवराज बनाया तथा उसे बेंगी के पूर्वी चालुक्यों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। गोविंद को सफलता मिली और उसने अपनी सेना के साथ कृष्णा और मुसी नदियों के संगम पर शिविर डाल दिया। यहां से बेंगी की दूसरी दूरी मात्र 100 मील थी। बेंगी के चालुक्य नरेश विष्णुवर्धन चतुर्थ ने बिना लड़े ही उसकी अधीनता मान ली। उसने राष्ट्रकूट युवराज को न केवल अपने राज्य का बड़ा भाग तथा हरजाना दिया, अपितु अपनी कन्या शील भट्टारिका का विवाह गोविंद के छोटे भाई ध्रुव से कर दिया। इस विजय के फलस्वरूप बेंगी राज्य पर अधिकांश भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार कृष्ण प्रथम एक योग्य शासक था तथा कुशल योद्धा भी सिद्ध हुआ। अपनी विजयों के द्वारा उसने अपनी स्थिति दक्षिण में सर्वोच्च बना ली। विंध्य पर्वत के दक्षिण में कोई भी शक्ति अब उसका सामना कर सकने में समर्थ नहीं रही। उसने राष्ट्रकूट राजवंश का अत्यंत विस्तार कर दिया। उसके साम्राज्य में संपूर्ण महाराष्ट्र एवं कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश का एक बड़ा भाग शामिल था। इस प्रकार उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए वह मार्ग प्रशस्त किया जिससे वे उत्तर भारत की राजनीति में भाग ले सके। विजेता होने के साथ साथ कृष्ण एक महान निर्माता भी था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। वह एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी था जिसने ब्राह्मणों को प्रभु धन दान में दिया था। उसने 773 ईस्वी तक शासन किया। अब हम गोविंद तृतीय के बारे में जानेंगे। कृष्ण प्रथम के दो पुत्र थे, गोविंद द्वितीय तथा ध्रुव। गोविंद अपने पिता के साथ में ही अनेक युद्धों में ख्याति प्राप्त कर चुका था, अतः वही कृष्ण के बाद राजा बना। उसने अपने छोटे भाई ध्रुव को नासिक का राज्यपाल नियुक्त किया। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा होने के बाद गोविंद विलासी हो गया तथा प्रशासनिक कार्यों के प्रति उदासीन हो गया। अतः उसकी अकर्मण्यता का लाभ उठाते हुए उसके छोटे भाई ध्रुव ने गोविंद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप दोनों भाइयों के बीच युद्ध हुआ। गोविंद द्वितीय ने कांची, गंगवाड़ी, बेंगी तथा मालवा के राजाओं से सहायता प्राप्त की, परंतु ध्रुव विजयी हुआ और गोविंद संभवतः मार डाला गया, ध्रुव के राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। गोविंद द्वितीय ने 773 ईस्वी से लेकर 780 तक शासन किया। अब हम ध्रुव के बारे में जानेंगे। गोविंद द्वितीय के पश्चात राष्ट्रकूट शासन की बागडोर उसके सुयोग्य तथा यशस्वी भाई ध्रुव के हाथों में आई। राजा होने पर ध्रुव ने निरुपम, कलिक वल्लभ, श्री वल्लभ तथा धारावर्ष की उपाधियां धारण की। उसकी गणना प्राचीन इतिहास के महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता शासकों में की जाती है। उसके काल में राजकूतों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का चतुर्दिक विकास हुआ। गोविंद के सहायकों पर आक्रमण तथा अधिकार, राजधानी में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने के बाद ध्रुव अपने भाई के सहायकों को दंड देने के लिए चला। सबसे पहले उसने गंगवाड़ी पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ पर गंगवंश का शासक शिवमार द्वितीय शासन कर रहा था। वह पराजित हुआ तथा ध्रुव ने उसके संपूर्ण राज्य को साम्राज्य में मिला लिया। अपने पुत्र स्तंभ को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। इससे राष्ट्रकूट राजा राज्य की दक्षिणी सीमा कावेरी तक जा पहुंची। उसके बाद उसने कांची के पल्लव राज्य पर आक्रमण किया। पल्लव वंश का शासक दंतिवर्मा के हाथों में था। ध्रुव ने उसे पराजित किया। पल्लव नरेश ने उसे हाथियों का उपहार दिया। राधनपुर लेख में ध्रुव की इस सफलता का उल्लेख मिलता है जिसके अनुसार एक ओर वास्तविक समुद्र था, दूसरी ओर सेनाओं के समुद्र के बीच घिरकर पल्लव नरेश भयभीत हो गया और अपनी सेना के बहुत से हाथियों को समर्पित कर दिया। ध्रुव का वेंगी के चालुक्य वंश के साथ भी संघर्ष हुआ। चालुक्य नरेश विष्णुवर्धन चतुर्थ ने उसके भाई गोविंद की सहायता की थी, अतः ध्रुव ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। इस युद्ध में बेमुलवाड़ के चालुक्य सामंत अरिकेसरी प्रथम ने ध्रुव की सहायता की। ध्रुव ने त्रिकलिंग पर अधिकार कर लिया तथा चालुक्य राजा ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। इन विजयों के परिणाम स्वरूप ध्रुव संपूर्ण दक्षिणापथ का एक छत्र शासक बन गया। अब हम ध्रुव के उत्तरी भारत के अभियान के बारे में जानेंगे। दक्षिणी भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने के पश्चात ध्रुव ने उस उत्तरी भारत की ओर ध्यान दिया। इस समय कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रतिहार तथा पाल राजवंशों का संघर्ष चल रहा था। प्रतिहार शासक वत्सराज मालवा तथा राजपूताना पर शासन कर रहा था। उसने ध्रुव के विरुद्ध अपने भाई गोविंद की सहायता की थी जिसके कारण ध्रुव उससे अत्यंत रुष्ट था। बंगाल का पाल शासक इस समय धर्मपाल के अधीन था तथा कन्नौज में इंद्रायुध नामक एक अत्यंत निर्मल राजा राज्य कर रहा था। वत्सराज तथा धर्मराज दोनों ही कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण कर वहां के राजा को पराजित किया तथा उसे अपनी अधीनता में रहने का अधिकार दे दिया। धर्मपाल इसे सहन न कर सका और तथा उससे कन्नौज की गद्दी इंद्रायुध के भाई या संबंधी चक्रायुध को दिलाने के उद्देश्य से वत्सराज ने के विरुद्ध प्रस्थान किया। दोनों के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें धर्मपाल की पराजय हुई। धर्मपाल युद्ध क्षेत्र में अपने दो श्वेत छत्रों को छोड़कर भाग गया तथा वत्सराज ने उन पर अपना अधिकार कर लिया। धर्मपाल ने पुनः शक्ति जुटाकर वत्सराज से युद्ध करने का निश्चय किया। इसी बीच 786 ईस्वी में ध्रुव ने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। ध्रुव ने नर्मदा नदी तट पर अपनी सेनाओं को एकत्रित किया तथा उन्हें अपने पुत्रों गोविंद तथा इंद्र के नेतृत्व कर दिया। इस समय वत्सराज अपनी सेना के साथ द्वाब में था। विंध्य पर्वत पार कर ध्रुव ने मालवा के प्रतिहार नरेश वत्सराज को बुरी तरह पराजित किया और राजपूताना के रेगिस्तान की ओर भाग गया। राधनपुर अभिलेख में विजय की सूचना मिलती है। इसके अनुसार ध्रुव ने वत्सराज के यश के साथ साथ उन राजछत्रों को भी छीन लिया जिन्हें उसने गौंड नरेश से लिया था। इसके बाद गंगा यमुना के द्वाब में ही उसने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को भी हराया। इस विजय की पुष्टि संजन लेख से होती है जिसके अनुसार ध्रुव ने गंगा यमुना के बीच भागते हुए गौंड राज की लक्ष्मी की के लील रविंदु तथा श्वेत छत्रों को छीन लिया था। ध्रुव का उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार करना तथा उत्तर भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करना नहीं था। अतः उत्तर के राजाओं को अपने शक्ति की अनुभूति कराकर तथा उत्तरी भारत के मैदानों में अपनी विजय वैजयंती फहराकर ध्रुव अतुल संपत्ति के साथ अपनी राजधानी वापस लौट आया। अब वह संपूर्ण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट था। इस प्रकार ध्रुव राष्ट्रकूट वंश के महानतम राजाओं में से एक था। उसने पूर्वगामी शासक गोविंद द्वितीय के काल में राष्ट्रकूट वंश की प्रतिष्ठा का जो आघात पहुंचा था उसे उसने केवल पुनर्स्थापित किया अपितु उसमें वृद्धि भी की। उसने अपनी शक्ति का विस्तार संपूर्ण भारत में कर दिया। सातवाहन वंश के पतन के बाद प्रथम बार ध्रुव के नेतृत्व में ही किसी दक्षिणी शासक ने मध्य भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया था। ध्रुव ने कुल 13 वर्षों तक राज्य किया। उसकी मृत्यु 793 ईस्वी में हो गई। अब हम गोविंद तृतीय के बारे में जानेंगे। ध्रुव के 4 पुत्र थे, कर्क, स्तंभ, गोविंद तथा इंद्र। इनमें से कर्क अपने पिता के जीवन काल में ही मर गया। सबसे बड़ा होने के कारण स्तंभ ही राज्य का वैधानिक उत्तराधिकारी था, किंतु ध्रुव अपने पुत्र की योग्यता एवं कर्मठता से मुग्ध था। अतः उसने उसी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया तथा स्तंभ को गंगवाड़ी तथा इंद्र को गुजरात और मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया। इस प्रकार गोविंद तृतीय अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। सूरत लेख से पता चलता है कि स्वयं ध्रुव ने अपने सुयोग्य पुत्र गोविंद को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। गोविंद तृतीय के राजा बनने से उसका बड़ा भाई स्तंभ बहुत ही दुखित हुआ और उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया जिसका उसने सफलतापूर्वक दमन कर दिया। स्तंभ एक वर्ष तक शांत रहा किंतु उसे सिंहासन का मोह बराबर सताता रहा। उसने गोविंद से शासन छीनने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध दक्षिण के 12 राजाओं का एक संघ तैयार किया। इसमें पल्लव राज दंति वर्मा, नोलंबवाड़ी का चारु पुनेर बनवासी का कीर्तिमीर तथा धारवाड़ का सामंत मारा सर्व प्रमुख रूप से सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त राज्य के कुछ उच्चाधिकारी भी स्तंभ का समर्थन कर रहे थे। गोविंद को उसकी योजना का पता लग गया, अतः वह इसे विफल करने के लिए तैयार हो गया। उसने गंगवाड़ी के राजकुमार शिवमार को कारागार से इस आशा के साथ मुक्त किया कि वह उसकी सहायता करेगा, किंतु गंगवाड़ी पहुँच कर वह स्तंभ से मिल गया। अब गोविंद के सामने स्तंभ का सीधा आक्रमण करने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं था। अतः उसने स्तंभ तथा उसके संघ पर आक्रमण कर दिया। स्तंभ पराजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया, परंतु गोविंद ने उसके साथ उदारता का व्यवहार किया और उसे गंग प्रदेश का वायसराय बना दिया। उसने अपने सहयोगी भाई इंद्र को लाट प्रदेश का वायसराय बनाया। इसके बाद उसने स्तंभ के अन्य सहायकों के विरुद्ध अभियान किया। गंगवाड़ी के राजकुमार शिवमार को पुनः बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया तथा उसका पुत्र विजयादित्य भी पराजित हुआ। गंग विजय के उपरांत उसने नोलंबवाड़ी तथा फिर कांची के पल्लव राज्य को जीता। पल्लव राज्य पर आक्रमण कर उसने दंतीवर्मा को पराजित किया। इस प्रकार गोविंद संपूर्ण दक्षिण का सार्वभौम सम्राट बन बैठा। अब उसके उत्तरी अभियान के बारे में हम जानेंगे। दक्षिण भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने के पश्चात अपने पिता के समान वह भी उत्तर भारत के अभियान पर निकल पड़ा। इस समय प्रतिहार नरेश नागभट्ट तथा पाल वंश के शासक धर्मपाल के बीच संघर्ष चल रहा था। नागभट्ट ने धर्मपाल तथा उसके संरक्षित कन्नौज नरेश चक्रायुद्ध को बुरी तरह पराजित कर दिया। कुछ विद्वानों का विचार है कि अपनी पराजय का बदला लेने के लिए धर्मपाल ने गोविंद तृतीय से सहायता मांगी, जिसके फलस्वरूप वह उत्तर की ओर उन्मुख हुआ। उसने बड़ी सावधानी से अपनी उत्तर विजय की योजना को क्रियान्वित किया। अपने छोटे भाई इंद्र को उसने गृह राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त किया तथा स्वयं नागभट्ट के ऊपर आक्रमण करने के लिए भोपाल झांसी मार्ग से होते हुए उसने कन्नौज की ओर प्रस्थान किया। दोनों राजाओं के बीच संभवतः बुंदेलखंड के किसी भाग में संघर्ष हुआ। इनमें नागभट्ट बुरी तरह पराजित हुआ तथा उसने युद्ध भूमि से भाग कर राजपुताने में आश्रय ग्रहण किया। संजन तथा राधनपुर ताम्रपत्र से पता चलता है कि गोविंद की इस सफलता का प्रमुख कारण उसका सैनिक नेतृत्व बहुत ही उत्तम किस्म का था। संजन तथा राधनपुर ताम्रपत्र गोविंद की इस सफलता का उल्लेख करते हैं, जिसके अनुसार जिस प्रकार शरद ऋतु आते ही आकाश में बादल गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार गोविंद के आते ही गुर्जर सम्राट न जाने कहां गायब हो गया। वह इतना अधिक भयाक्रांत था कि स्वप्न में भी किसी युद्ध का दृश्य देखता तो डर के मारे कांपने लगता था। इसके बाद धर्मपाल तथा कन्नौज के राजा चक्रायुद्ध ने स्वतः उसके सम्मुख हथियार डाल दिए। इस प्रकार दूसरी बार भी राष्ट्रकूट सेना ने उत्तरी भारत के मैदानों में सफलता प्राप्त की। राष्ट्रकूट राजकवियों ने गोविंद की इस सफलता का गुणगान करते हुए लिखा है कि दक्कन की रणभेरियों ने हिमालय की गुफाओं को गुंजित कर दिया। संजन ताम्रपत्रों में कहा गया है कि गोविंद के वाहनों ने गंगा यमुना के पवित्र जल में स्नान किया, किंतु गोविंद ने हिमालय तक जाने का विवरण अतिरंजित है। वस्तुतः चक्रायुद्ध द्वारा आत्मसमर्पण कर दिए जाने के बाद उसे आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। नागभट्ट को पराजित करने तथा चक्रायुद्ध और धर्मपाल को आत्मसमर्पण करवा लेने के पश्चात गोविंद अपने राज्य गृह लौट आया। उसके उत्तर भारतीय अभियान का उद्देश्य अपना साम्राज्य विस्तार करना नहीं अपितु मात्र यश विस्तार करना था। इस प्रकार उसके उत्तरी अभियान से प्रतिहारों तथा पालों को कोई क्षेत्रीय हानि नहीं हुई। लौटते समय वह नर्मदा नदी के समीप श्री भवन, जिसका नाम भणोच है, नामक स्थान पर रुका। श्री भवन के राजा सर्व ने उसे बहुमूल्य उपहार दिए। अब उसके दक्षिण विजय के बारे में हम जानेंगे। दक्षिण विजय में गोविंद की गृह राज्य से अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए सुदूर दक्षिण के द्रविड़ शासकों ने उसके विरुद्ध एक संघ तैयार कर लिया। इसमें पल्लव, पांडे, चोल, केरल तथा पश्चिमी गंग शासक सम्मिलित थे। इस संघ ने गोविंद के राज्य पर आक्रमण कर दिया। तुंग भद्र नदी के तट पर गोविंद ने इन सभी राजाओं को पराजित किया। गंग का राजा इस युद्ध में मार डाला गया तथा पल्लवों तथा पांडवों का पताका भी छीन लिया गया। इस प्रकार इन सभी शासकों को पुनः अपनी अधीनता स्वीकार कर ली गई। संजन लेख में गोविंद की इन सफलताओं का उल्लेख हुआ है। उसकी शक्ति से भयभीत होकर लंका के शासक ने उसकी अधीनता स्वीकार करते हुए उसके दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा। गोविंद ने बेंगी की राजनीति में भी हस्तक्षेप कर वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। विष्णुवर्धन के समय तक बेंगी के चालुक्यों तथा राष्ट्रकूटों के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। कृष्ण विष्णुवर्धन के पश्चात 799 ईस्वी में विजयादित्य जब राजा बना तो उसने गोविंद की प्रभुसत्ता को चुनौती दी। विजयादित्य के भाई भीम ने उसका विरोध किया तथा उसने गोविंद से सहायता मांगी। फलस्वरूप गोविंद ने बेंगी पर आक्रमण कर विजयादित्य को पराजित किया। भीम उसका अत्यंत विनम्र शासक बन गया। इस प्रकार गोविंद ने उत्तर भारत में विजय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पश्चिम में अरब से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक में विस्तृत भूभाग पर अपनी बजती फहरा दिया। वह निश्चयता न केवल राष्ट्रकूटों का अपितु प्राचीन भारत के युगतम सम्राटों का सेनापतियों में से एक था। उसके समय में राष्ट्रकूट साम्राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर था। वाणी डिंडोरी लेख में यह कथन है कि राजा बनने के बाद राष्ट्रकूट अजय हो गए। वस्तुतः गोविंद तृतीय के विषय में सत्य है। गोविंद तृतीय ने 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शांतिपूर्वक व्यतीत किया। अपनी मृत्यु से पूर्व उसने एकमात्र पुत्र अमोघ वर्ष को गुजरात के राज्यपाल कर्क के संरक्षण में डाल दिया।